हमने पाया।
ओम शांति। तो विशेष सभी हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, तो हिस्ट्री हॉल में हमें बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वो सब बातें हमें क्या करता है, याद दिलाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने विशेष दो बातों का विशेष पुरुषार्थ किया। तो एक तो बाबा ने देहाभिमानी बनने की बहुत मेहनत की, और इसीलिए बाबा एक साधारणता से नारायण बन गए इसी एक अभ्यास से। और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ दूसरा अभ्यास बाबा ने किया, बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया और अपने इंद्रियों पर शासन किया, और उसी से बाबा को यह पद मिला। इसी तरह बाबा कहते हमें भी और कुछ नया नहीं करना है, जो बाबा ने किया मम्मा ने किया वही हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि ये दो बातों का पुरुषार्थ हमारे जीवन में बहुत आगे करता है। एक तो आत्माभिमानी का पुरुषार्थ और दूसरा स्वराज्याधिकारी स्थिति, इंद्रियों पर शासन। और वैसे अगर इंद्रियों पर शासन करेंगे तब ही जाकर के हमारी स्वराज्याधिकारी स्थिति आएगी। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो, आत्माभिमानी बनो। लेकिन आज हमारा इन बातों के ऊपर ध्यान कम है। हम कई चाहते हैं अशरीरी बन जाए, विदेही बन जाए, बाबा की निरंतर याद रहे, सहन शक्ति का गुण आए, शक्ति आए। लेकिन जो मूल अभ्यास है, जो बाबा ने इसके ऊपर मेहनत की, सारा दिन हमारी कर्मेंद्रिया क्या क्या करती है उसके तरफ ध्यान नहीं है। और इसीलिए कई बार हमारे इस ध्यान की कमी के कारण, इस विघ्नों के कारण और विघ्न पैदा होते हैं। कर्मेंद्रिय का विघ्न जिसके ऊपर है उसको फिर आपस का विघ्न पैदा होता है, संस्कारों का विघ्न पैदा होता है, प्रकृति के का विघ्न पैदा होता है। इसीलिए स्वराज्याधिकारी स्थिति, क्योंकि हमारा विषय तो लक्ष्य क्या है, राजा बनने का लक्ष्य है। लेकिन राजा कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो, किसको बनना, हाथ तो खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कौन बन सकता राजा, इसके लिए बाबा ने फार्मूला क्या बनाया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर राज्य किया वो क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो अभी हाथ खड़ा किया था, आप चेक करो, आप मन को कहे मन तुम आधा घंटा परम धाम में रहना, क्या रहता है, मन को कहा तुम परम धाम में जाओ, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। तो इसीलिए राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन राजा बनने के लिए विशेष अपने इंद्रियों का राजा बनने की जरूरत है। इसीलिए कहते ना, तुम पहले अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, ये शरीर हमारा क्या है, घर है, पहला घर। इस घर को जिसने सुधारा उसके व्यवहार में संस्कार में बदलाव आएगा। इसलिए इस घर में रहने वाले जो भी हैं, कान है, मुख है, आंखें हैं, इनको हमें क्या करना है, ज्ञान में चलाना है। और ये बाबा ने मेहनत की, बाबा ने रोज अपना दरबार लगा करके एक एक इंद्रिय से पूछताछ किया, हे कान तुमने आज क्या किया, हे मन तुमने क्या किया। लेकिन आज हम कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी टकेचर काजा। इस नगरी का राजा सोया है और जो चाहे वो रहे। दासी कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान मार्ग में चलता है, इंद्रियों के अधीन है, न ज्ञान की सेवा करता है न धन से सेवा करता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है और रोज ज्ञान में आता है, तो क्या बनेंगे, दास दासी, दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं, और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है। उसका चेहरा कभी खुशी में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे से गलती है हो रही, मैं इंद्रियों के अधीन हूं। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाले बनते हैं। इसलिए बाबा कहते ज्ञान का दान भी करो, इंद्रियों पर शासन भी करो, धन का दान भी करो, वो राजा बनेंगे। और समझे कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी किसी को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन भी लगाया और ज्ञान भी सुनाया, इसीलिए क्या बना वो? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, न धन सेवा में लगाता है, न ज्ञान किसी को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, बिल्कुल अपने ऊपर अटेंशन रखकर के इंद्रियों पर शासन किया उसने, तो वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी किसी को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन भी सेवा में लगाता है, ज्ञान भी सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा बनेगा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रहे। इसीलिए लक्ष्य क्या है हमारा? राजा बनने का। तो राजाओं की निशानी होती है, क्या निशानी होती है? राजा की पहली निशानी है, राजा जिस राजा में रहता है वो सब लोग उसका कहना मानते हैं, उसको कहते हैं राजा। तो आप जिस राजा में रहते हैं, शरीर हमारा देश है और इसमें हम रहते हैं, तो क्या हमारा सब कहना मानते हैं? अगर राजा को कोई कहना नहीं मानता तो राजा उसको फांसी देता है, शिक्षा देता है। तो हम अपने राजा में रहते हैं तो हमारा कान अगर नहीं मानता, मन नहीं मानता, क्या हम उसको शिक्षा देते हैं? तो नहीं देते, तो अधीन वाला अधिकारी कैसे बन सकता है? इसलिए इसके ऊपर हमारा ध्यान। दूसरी राजा की निशानी होती है, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई भी खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप दान इतना करते हैं? अब बस में से कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में से कहीं जा रहे हैं, और बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी उसको लास्ट तक नहीं सुनाया, तो आपके घर से कैसा गया? खाली गया। तो राजा कैसे बनेंगे फिर? तो इसीलिए दान के संस्कार चाहिए। जिसके पास इतना सारा खजाना है वो देने के बिना नहीं रहता, तो जो देता है वो क्या है? राजा है। नहीं देता कंजूस राजा नहीं। लेकिन राजा कैसे बनना है? संपन्न राजा। तीसरे राजा की निशानी, राजा शिकार करता है। पहले कहानियां देते हैं, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था। तो अभी आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था राजा बनने के लिए, तो कितनी शिकार की आप लोगों ने? माता ही बताऊं क्या शिकार? और राजा शिकार किसकी करता है? चूहा मार के गली गली में घुमाता है, मैं चूहा मार के आया हूं। लोग तो हंसेंगे, कहेंगे अरे आप तो राजा है और चूहा मार के। इसी तरह अगर राजा बनना है तो आपको भी क्या करनी पड़ेगी? शेर की शिकार करनी पड़ेगी। शेर अर्थात किसी अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। वो भी ऐसे नहीं कि 2000 साल के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो तो चूहा बिली हो गया फिर। तो चूहा बिली की नहीं, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति को आप ज्ञान सुनाओ जिसको देखने से अन्य आत्माएं लोग भी आए। इसीलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए, और जो शिकार करता है वो कौन है? राजा है। तो सप्ताह में एक शिकार तो जरूर करनी है। तो जिस जगह पर आप लोग रहते हैं, इसीलिए बाबा की मुरली जब चलते हैं, हाँ बाबा ने आज भी ना सर्विसेबल बनो, सर्विस करो, सेवा करो, ये बाबा की जो मुरली है राजा बनने वालों के लिए होती है। लेकिन हम तो सुन तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में। इसीलिए अगर राजा बनना है तो शिकार जरूर करनी है। कई कहते हैं कोई सुनता ही नहीं, हम बहुत सुनाते हैं, क्यों नहीं सुनता? इसके मतलब आपके जो बाण ज्ञान के तीर है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, योग का बल नहीं है, इसीलिए नहीं सुन रहे। अच्छा कोई नहीं सुनता तो कम से कम उस शिकार को जाली में तो फंसाओ, सेंटर पे तक लेके आओ, बाकी मारने का काम बहने ही तो कर ही देगी। लेकिन जिसने वहां तक लाया आदि दुआ उसको भी मिलती है। तो इसीलिए शिकार का संस्कार चाहिए, सेवा का संस्कार चाहिए। जो सेवा नहीं करते वो शिकार राजा कैसे बनेंगे? आप देखो नरेंद्र मोदी जी, हाँ तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी बड़ी बड़ी सभाएं लगाई उन्होंने, कितनी बड़े, वो तो पता नहीं कितना साल रहे, ये कैसी चेयर है। लेकिन आज हम तो बाबा कहते आप गारंटी में तुम्हें राजा बनाने वाले हो, तो इतनी बड़ी सभा लगाते हम? इतनी नस्या होनी चाहिए। तो इसलिए सेवा का शौक चाहिए, वो जाकर के क्या बनता है, राजा बनता है। इसलिए राजा बनने के लिए चाहे मनसा से सेवा करो, ये कोई ना कोई सेवा का संस्कार चाहिए। और राजे की क्या निशानी होते हैं, फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन आम को बोलते हैं। क्यों? मीठा तो उससे भी ज्यादा फल और भी मीठे होते हैं। फलों का राजा आम इसीलिए बोलते हैं, उसके साथ ज्यादा प्यार होता है, आम के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। अब आजकल चल रहा है ना सीजन, खत्म होने जा रहे हैं, तो आम के साथ प्यार की निशानी क्या है, जब उसको लेकर के मुंह में चूसना शुरू करेंगे, वो गुठली खत्म भी होगा उसका, तब भी अंदर डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, फेंकने का भी दिल नहीं करेगा। ये है उसको प्यार की निशानी। अब नारियल को लेकर चूसना शुरू करो, जो 32 दांत है वो भी टूट जाएगी, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। इसीलिए उसको राजा नहीं कहा हुआ है, जबकि उसको चढ़ाया जाता है, मूर्ति देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं, कोई भी शुभ कार्य है नारियल को करते हैं, लेकिन उसको राजा नहीं बोला। क्यों? उसके साथ प्यार किसी का नहीं है। और राजा फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है। इसी तरह जो राजा बनने वाला व्यक्ति है, ऊपर से नम्रचित होगा, निर्माण होगा, और अंदर से नियम संयम के लिए कैसा होगा, वो कड़क होगा, अपने लिए कड़क होगा। और नारियल क्वालिटी वाला, हाँ, ऊपर से कड़क, मैं जैसा कहता ऐसा करो, ये करो, वो करो, दूसरे को ऑर्डर करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, हाँ, उसको राजा नहीं कहेंगे। तो राजा बनने के लिए क्या बनो, आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों कहा? क्योंकि आम जब कोई थक जाता है, कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे। अब नारियल के नीचे जाकर सो जाएगा तो छाया तो छोड़ो, और ही नारियल गिर करके इसका सिर भी टूट जाएगा, धूप छाया तो मिलेगी नहीं उसको, इसीलिए वो फलों का राजा नहीं बना। तो इसी तरह अगर नारियल के नीचे, आम के नीचे जाकर कोई सोता है, उसकी थकान मिट जाती है, वो रिफ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इसी तरह अगर आपके संपर्क में कोई दुनियावी बातों से, परेशानी से तंग होकर के कोई आता है, अगर आप उसकी थकान मिटाते हैं, उसको कोई ऐसी अच्छी बातें सुनाते हैं, वो फ्रेश होकर के जाता है, वो राजा बनता है। अब कई कई तो क्या करते हैं, कोई संपर्क में आता है तंग होकर के, कोई ऐसी उल्टी सुलटी इधर उधर की बात सुना करके और उसका दिमाग खराब करके भेज देंगे। आया था शांति के लिए, आया था कुछ फ्रेश होने के लिए, और कोई किसी की बात सुना करके भावना खराब करके भेजा, वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। तो राजा बनने के लिए दूसरे के दुख को हरो, सबको सुख दो, जो सुख देता है वो क्या बनता है, राजा बनता है। और राजा बनने के लिए फलों का राजा आम को ही क्यों कहा? क्योंकि आम जब फल लगता है तो झुकता है, नारियल नहीं झुकता। इसीलिए कहते हैं ना देवताओं को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो क्या कहते हैं, नारियल को तोड़ो। नारियल माने हमारे अंदर जो रियल नहीं, उसको छोड़ो। वैसा तो देखा जाए तो नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है, अगर उसका खोबरा खाना है, नारियल का पानी पीना है, तो क्या करते हैं, उसका ऊपर का कवच तोड़ना पड़ता है। कवच बड़ा कड़क होता है, अगर वो तोड़ेंगे तो पानी भी मिलेगा और खोबरा भी मिलेगा, वो शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसे कई बीमारियां भी दूर होते हैं, नारियल का पानी और खोबरा अच्छा रहता है। लेकिन उसको तोड़ने की क्या होते हैं, मेहनत होती है। इसी तरह आत्मा का आकार भी कैसा है, नारियल गोल सेप। आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बहुत अंदर गुण है, लेकिन उन गुणों को अगर बाहर लाना है, ऊपर जो विकारों का कवच है उसको तोड़ना पड़ता है। जब तक वो कवच नहीं टूटेगा तब तक बाबा प्रसन्न। हमने तो नारियल लाकर के शिव जी के सामने पटका दिया है, कोई तोड़ने में लगा है, कोई 10 साल से तोड़ रहा है, कोई 20 साल से, अभी तक नारियल। और जब तक हमारा नारियल नहीं टूटेगा तब तक बाबा प्रसन्न नहीं होगा। हमने तो ला करके पटका दिया, लेकिन पटकाना नहीं, लेकिन उसको क्या करना है, जल्दी जल्दी तोड़ना है। जो नारियल तोड़ेगा वही क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो राजा बनने के लिए आम बनना है, नारियल नहीं बनना। तो इसीलिए राजा बनने के लिए, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे, कैसे घुसे थे याद है इतिहास? भारत में अंग्रेज आए उस समय भारत में कुछ नवाब थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ दोस्ती की, दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, और भारत क्या हो गया, परातंत्र हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है, एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहां है, भ्रुकुटी में राजा रहता है, और इसी इंडिया में कई नवाब आए, कौन से, कान मुंह कांग, ये सब कौन है, नवाब, और माया रूपी अंग्रेज आकर के क्या किया, उनके साथ दोस्ती की, नवाबों के साथ, कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और करते करते दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक हो गया, और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश कैसा है, परातंत्र में। जब मैं अभी मैं केरला में गया था तो केरला में मेरे को एक जगह पर बीच है समुद्र का, वहां लेके गए, ताकि यहां से वास्कुडी गामा अंदर आया था, और यहाँ वहां का जो राजा था, राजा समुद्री राजा बोलते हैं उसको, तो उसने क्या किया, उसको सम्मान किया, क्योंकि भारत में तो अतिथि देव, और वहां से भारत में घुसे थे। तो देखो इसी तरह भारत में अंग्रेज आए कहां से, तो इसी तरह हमारा शरीर भी कान काली कटाए, यहां से घुस जाते हैं, आंखों के द्वारा घुस जाते हैं, मन के द्वारा घुस जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, इनको एक एक कर्मेंद्रिय को सावधान किया था, और रोज उनकी पूछताछ करते थे, लेकिन आज हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए जैसे पहले राजा ही किस में रहते थे, किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी अगर अंदर आता है उसको अंदर परमिशन नहीं मिलती थी। तो इसी तरह शरीर भी हमारा एक प्रकार का किला है, और इस किले के कई दरवाजे हैं, कान मुंह कांग ये सब क्या है, दरवाजे हैं, लेकिन इस दरवाजे में कोई भी रोकने टोकने वाला अब कुछ भी बातें घुस जाते हैं, इसीलिए राजा की हालत गंभीर है। इसीलिए अब हमारा पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस जो जैसे अगर कोई देश के अंदर बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या हो सकती है। आज देश में जो भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है उसका कारण क्या है, जो बॉर्डर पर रहने वाले वही मिले होते हैं, उनको कुछ दे देते हैं और यहां बहुत बड़ी घटनाएं हो जाते हैं। इसी तरह आज हमारे द्वारा कुछ गलतियां होती हैं, कोई हम संस्कार के वश हो जाते हैं, भी ये होते कहां से, हमारे ही कर्मेंद्र क्या करते हैं, माया से मिल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना क्या लगा दो, दरबार लगा दो, उनको पूछताछ करो, तब जाकर के माया नहीं आएगी, तब जाकर के हमारा पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। अब पर भारत से अंग्रेज निकालने के लिए क्या किया था, क्या किया, जगह जगह पर सभा ली, जालियांवाला बाग अभी भी फेमस है ना, उसके बाद अखबार निकाले, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते वंदे मातरम जब नारा बोलते थे भारत में तो अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, क्यों, उनको लगता है वंदे मातरम मतलब उनको लगता है कि बांधो और मारो, उनको तो हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो अंग्रेज को लगता था कि बांधो और मारो बोलते, इसीलिए वो मना करते थे। तो जब उन्होंने नारे लगाए अंग्रेजों गो बैक साइमन गो बैक, तब जाकर के अंग्रेज लोग यहां से चले गए। इसी तरह हमें भी रोज अपना दरबार लगा करके एक एक कर्मेंद्रिय को अंदर से समझाना है, उनको माया के विरुद्ध भड़काना है, और हमारी हर कर्मेंद्रिय कहे कि माया गो बैक, तब जाकर के माया जाएगी। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता और क्या हुआ, आ जाओ कोई बात नहीं मेरे तरफ से आ जाओ। अब कितना साल भी आप तपस्या करो पुरुषार्थ करो, माया जीत असंभव है बनना, इसीलिए हर कर्मेंद्रिय को सकत बनाना जरूरी है, और तब जाकर के हम राजा बन सकते हैं। तो राजा बनने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, इसीलिए रोज इनकी क्या करनी है, चेकिंग करनी है, रोज उनका दरबार लगाना है। तो हम कैसे दरबार लगाएं, रोज अमृत वेला करने के बाद जब शरीर में प्रवेश करते हैं 4:45 बजे, शरीर में आने के बाद सभी कर्मेंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो, और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद 5 मिनट सभी कर्मेंद्रिय से बातें करनी है। कैसी बातें करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा तो श्री बाबा के प्रवेशता से पूर्व बाबा ने ये पूरा अभ्यास किया था, और इसीलिए बाबा ने देखो ये ऊंचा पद प्राप्त किया है, लेकिन आज हमारी इसके तरफ मेहनत, दिल पर हाथ रख करके पूछो कि हाँ हमारी, और इसीलिए आज हमारे से जो गलतियां होती है, हमारे से लोग पसंद नहीं करते हमें, हमें क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें पसंद नहीं करते मतलब क्या करते हैं, क्योंकि हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हमारे किसी के लिए दृष्टिकोण ऐसा बना हुआ है, सामने से कोई आता है मन कहता है बेकार है ये अच्छा नहीं है, तो तुरंत मन को समझे हेमान खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो, बाबा तो कहता है मीठे बच्चे और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। लेकिन हम कभी भी मन को कहते ठीक है तुम बोल दो ये सचमुच बेकार है, इसलिए हमारी भावना खराब की, किसी के लिए नफरत पैदा की, घृणा पैदा की, किसने किया, मन ने किया। तो हम मन के अधीन है, आंखों के अधीन है, सभी इंद्रियों के अधीन, अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर राजा बनना है तो क्या करना है, ऐसे नहीं कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो यहाँ समर्पित है वो राजा बनेंगे, जो इतना साल से 80 साल से ज्ञान में चित है वो राजा बनेंगे, बाबा ने कोई ये फार्मूला नहीं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, चाहे यहाँ रहने वाला हो चाहे कितना साल से ज्ञान, बाबा देखेगा इन्होंने ज्ञान में चलने के बाद अपने पर शासन कितना किया, और वही सबके प्रिय बनते हैं। अब समझो इतना साल 50 साल में कोई ज्ञान में चलता है, उसका मुख पर कंट्रोल नहीं है, अंदर ईर्ष्या भरी है, तो वो थोड़ी पसंद करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे राजा कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए केवल अपने पर क्या चाहिए, शासन चाहिए। सत्युग और त्रेता का राजा वो बनता है जिन्होंने संगम युग में जो प्रभु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के आधार से इंद्रियों पर शासन किया है, वो सत्युग त्रेता के राजे। द्वापर युग का राजा कौन बनता है, जिसके पास बाहुबल है, सैन्य बल है, वो द्वापर युग के राजा। और कलयुग का राजा जो दूसरे की जितना बुराई करता है, ये खराब है, ये ऐसे है, दूसरे कहते हैं हाँ सचमुच ये अच्छा है। आजकल इलेक्शन होते तो क्या होता है, माइक के ऊपर क्या सुनाई पड़ता है, ये पार्टी वाले ऐसे है वैसे है, लोग सुन सुन करके वोटिंग करते, तो भाई जितनी जिसकी ज्यादा बुराई सुनी उसको वोटिंग नहीं देंगे। तो इसी तरह अगर हम भी यहां इंद्रियों पर शासन करने के बजाय हम किसी की बुराई करके अपने आप को अच्छा समझते हैं, तो हम तो सत्युग त्रेता के राजा नहीं बनेंगे, कहां के बनेंगे, कलयुग के राजा बनना पड़ेगा फिर। या फिर कईयों के पास सैन्य बल धन बल दे करके बड़ों को खुश किया और अच्छा बड़े बन गए, वो फिर वहां के सत्यु के राजा नहीं बनेंगे। सत्यु के असली राजा बनना है, अपने पर शासन चाहिए, वो असली राजा, वो सच्चा राजा। इसीलिए मैं बाबा कहते बच्चे इंद्रियों पर शासन करो, स्वराज्य अधिकारी बनो, और उसके लिए रोज दरबार लगाना है। तो कैसे लगाना है, तो सबसे पहले जैसे कहा पौने पांच के बाद जब 5 मिनट के लिए सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान तुम मेरे इस राजे की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वर के महावाक्य कैसे सुनता, इसीलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तो तुम्हारा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है जो विश्वास वाले उसको कहां रखते हैं, बॉर्डर पर। तो मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन हे कान आज अमृतवेला मैं ऊपर गया था, लेकिन शिव बाबा ना परम हित से मेरा दोस्त है, वो मेरी राजाई फिर से देना चाहता है, उसने तुम्हारे लिए कुछ सावधानी दी है, तो हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो, क्योंकि कान क्यों जिंदा है, आत्मा ने कमाया हुआ खून वहां पर सप्लाई होते, इसीलिए उसकी जीवाणु जिंदे, अगर कान थोड़ा सा डिस्टेंस में होता जिंदा रहता, तो खाता किसका, राजा का खा रहे हैं, और धोखा किसको दे रहे हैं, उसी को राजा को धोखा दे रहे हैं, वेरस सुनता है मतलब राजा को क्या दे रहे हैं। इसीलिए हे कान तुम सावधान बन जाओ, अगर आज तुमने आज से कोई वेरत कुछ बातें किसी की सुनी तो मैं तुम्हें शाम को फिर दरबार लगाने वाला हूं, रात को सोने से पहले, ये सवेरे की दरबार की बात है, फिर सोने से पहले दरबार लगाने वाला हूं, अगर सारा तुमने दिन तुमने कुछ व्यर्थ बातें किसी की सुनी मैं तुम्हें सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल मैंने पूरे मेरे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगाए हैं, क्योंकि आजकल जमाना है ना सिर्फ सीसी कैमरे में पता चलता है कौन आया और कौन गया क्या हुआ, अगर वो सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में कुछ गलत दिखाई पड़ेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को कैसे सुनाता, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे द्वारा मैंने इतनी सारी सेवा करके ज्ञान सुना करके मुझे बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से नाराज हो जाता है, मेरे को देखते ही दूर चला जाता है, मुझे बद्दुआएं देता, क्या इसके लिए मैंने तुमको रखा? अगर तुमने किसी के लिए ऐसा बोला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के भसी आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको दुनिया की आंखें देखने के लिए तरस रहे एक सेकंड के दर्शन के लिए, और तुमने तो उस सत्यम शिवम सुंदरम को घंटों तक देखा है, खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, तो क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास, हे पांव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले मुख ने भाषण किया आदि दुआ तुमको मिलती है, भले हाथ ने कर्म ना सेवा की रोटी बेली आदि दुआ किसको मिलती है? पांव को, क्योंकि पांव क्या करते हैं? सभी इंद्रियों को उठा करके लेके आता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में जाता है उसके चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया, इसीलिए चरण में कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों छूते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को किसने लाया? लेकिन कभी है चरण, तुम कभी कभी तुम क्या करते हो, किसी को परचिंतन करने के लिए भी किसी का जाते हो, उस समय तुम मुख को कहना है, मुख तुम जाओ आधा घंटा परचिंतन करके जो भी करके आओ, मैं यहां बैठा हूं। अब पांव वहां जाएंगे नहीं तो मुख अकेले जाएगा, अगर पांव न जाएगा तो कान अकेले जाएगा। आगे चलो मन के पास, हे मन तुम ही मेरे इस राजा की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वर का गुणगान कैसे करता? इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा मैं ईश्वर का गुणगान करता हूँ, चिंतन करता हूँ। लेकिन आजकल तुम कई व्यर्थों का भी गुणगान करते हो, किसी का परचिंतन की बातों का भी गुणगान करते हो, क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा? अगर तुम ऐसा व्यर्थ चिंतन करेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, क्योंकि सभी कर्मेंद्र से मुख्य कौन है? बुद्धि, केंद्रीय गवर्नमेंट है, यहां से कुछ भी टप्पा मिला कहीं चलना है वो कहते हैं हाँ चल गया, जो भी कुछ गलत हुआ उसका कारण कौन है? बुद्धि, क्योंकि गलत निर्णय। तो हे बुद्धि मैंने तो तुमको चुन करके सभी इंद्रियों में से मुख्य मंत्री बनाया, और मंत्री बनाने के बाद मैंने तो निश्चिंत होकर के पूरी राजाई तुम्हारे हाथ में दी थी, मेरे सोने के महल थे, सोने का पुष्पक विमान था, इतनी अच्छी राजाई थी, मैंने तुमको तुमको मंत्री बना करके सौंपी थी, मैं निश्चिंत होकर के बैठा था, लेकिन तुमने ऐसे कुछ गलत निर्णय करके, ऐसे कुछ व्यर्थ निर्णय करके तुमने पूरी मेरी राजाई गंवा दी। राजाई तो गंवाई थी, लेकिन मुझे तुमने रावण के जेल में भी डाल दिया, क्या यही मेरे विश्वास का फायदा लिया तुमने? इसीलिए हे बुद्धि आज से अगर तुम कोई भी प्रकार का गलत निर्णय करेगी मैं तुम्हें सजा दूंगा। यह है राजा बनने का, इतना हमारा ध्यान चाहिए। तो हाथ तो खड़ा किया था सबने, इतना है ध्यान सबका? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये चेकिंग चाहिए, और ये ब्रह्मा बाबा ने चेकिंग की है। ये हिस्ट्री हमें यही याद दिलाता ना, बाबा ने जो किया है, मम्मा ने जो किया, वो हमें भी क्या करना है? करना है। ऐसा हमें एक एक, और जिसकी कर्मिंद्रिया कंट्रोल में है, जो व्यर्थ नहीं बोलते, किसी का परचिंतन नहीं करते, जिसके अंदर भावना अच्छी है, वो कहेंगे माता कितनी अच्छी है। कितनी अच्छी है मतलब क्या अच्छा है? माना उसकी हर इंद्रिया उसके अपने वश में है, और जिसकी इंद्रिया वश में है उसके जीवन में दैवी गुण आएंगे, सहन शक्ति आएगी, नम्रता का गुण आएगा, धैर्यता का सब गुण कला आएगी, और वो राजा बन सकता है। तो इसलिए राजा बनने के लिए हमें हर इंद्रियों पर शासन चाहिए, और तब राजा बनेंगे। तो ये सवेरे का दरबार बताया, और सोने से पहले फिर दरबार लगा दो एक बार, सबसे पहले कान से बात करो, हे कान आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट क्या है बताओ, सबसे पहले कान को पूछो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माताजी आई थी और किसी का यहाँ की किसी बातों का परचिंतन कर रही थी, यहाँ तो ऐसे रहते हैं, ये वो भाई ऐसा करता रहता है, तुमने बड़ा नजदीक उकर के सुना था, मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ हे कान मैंने तुमको ऑर्डर किया था कि आज कोई किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुनना, तो भी तुमने नजदीक जाकर के आधा घंटा तक वो बातें सुनी थी, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। सजा मतलब कोई कान काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देने, हा? क्योंकि कौन से कान पर चिंतन सुनते हैं, जिस कान में ज्ञान की कमी है। अगर ज्ञान से भरपूर है वो कभी भी कोई सुनाएगा भी कहेंगे बे माता जी भाई सुने को जो होता है साक्षी होकर के देखना चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो सुनेंगे नहीं। इसका मतलब ज्ञान की क्या है, कमी है। तो उसको सजा कौन सी दो, दोबारा मुरली सुनो। फिर आगे चलो मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला था, दुश्मन को अंदर कर दिया था, तो कम से कम तुमने अपना दरवाजा तो बंद रखना चाहिए था, हा? क्योंकि मेरे पास दुश्मन आने के लिए मैं 7-8 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने दरवाजे बंद रखना है। तुमने भी कहा हाँ यहाँ तो सचमुच ऐसा होता रहता है, वो भी ऐसे बोलते रहते हैं, तो तुम्हारे लिए सजा कौन सी, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुक्की, मौन रहना मतलब उसको सजा। अगर परचिंतन एक घंटा किया बैठ करके उसकी क्या सजा दो, मौन, तो ताकि परसों फिर अक्कल आएगी, फिर हमारा कारोबार बंद रहेगा। फिर इसीलिए क्या करेगा वो, व्यर्थ बोलेगा नहीं। इसको कहते राजा, एक एक कर्मेंद्र की चेकिंग करना। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब सफेद ड्रेस पहन लिया, ब्याज पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन देखने से फिर कहेंगे ये तो ऐसे है वैसे है कि, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आंतरिक परिवर्तन चाहिए। हर इंद्रिया हमारी, इसीलिए कहते ज्ञान में बाबा कहते चैरिटी बिगेंस एट होम। तो क्या आपके घर के अंदर के सब ज्ञान में चलते हैं? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है अर्थात वो हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है। अगर नहीं चलती है इसका मतलब कुछ गड़बड़ होते है। विघन क्यों आते हैं? इसके द्वारा तो आता है, इसके पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर इस दुनिया पर राज्य करना है, ये दुनिया स्थूल दुनिया राज्य करना है, सत्यु की दुनिया, इसके लिए ये जो शैंपल की दुनिया है, शरीर भी हमारी क्या है, एक दुनिया है। जैसे इस दुनिया में तीन लोग हैं, साकार आकार निराकार, इसी तरह इस दुनिया में भी तीन लोग हैं, साकार मनुष्य आत्मलोक। तो इस जैसे इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है, 70%। इस दुनिया में 750-800 करोड़ लोग हैं, तो इस शरीर में भी 800 करोड़ जीवाणु हैं, 800 करोड़ से जीवाणु से बना हुआ शरीर। तो जिसने इस शरीर रूपी दुनिया पर राज्य किया वही इस दुनिया पर राज्य कर सकता है। इसीलिए हर एक को चांस है। ऐसे नहीं समझना हम तो माता है, हम तो अनपढ़ है, हम क्या राजा बन सकते हैं, हा? तो राजा तो कोई भी बन सकता है, केवल क्या चाहिए, अपनी इंद्रियों पर शासन चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया था, तो हमें भी क्या करना है, ये पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए हमारा ये अटेंशन चाहिए कि हम, लेकिन ये जो इसका पुरुषार्थ करने के लिए हमारा चाहिए आत्माभिमान स्थिति। क्योंकि राजा जो होता है, राजा कैसा होता है, नम्रचित होता है। राजा का सबसे पहला संस्कार होता है नम्रता। जिसने नम्रता धारण की वो कभी भी मरता न मरता, वो कभी भी मरता नहीं है। क्योंकि हमारा देहाभिमान होता है, देहाभिमान वाला कभी भी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए कहते ना विद्या विनयन शोभते, आपके पास जितना ज्ञान आया, ज्ञान की निशानी क्या है, विनम्रता। क्योंकि अगर थोड़ा भी अभिमान होगा, थोड़ा भी कुछ होगा, उसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलेंगे, और जिसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्माभिमानी नहीं बन सकता। इसीलिए जो भी कुछ हमारे अंदर की कला है, विशेषता है, ये किसकी देना है, ये बाबा की देना है, मेरा कुछ भी नहीं। एक बार की बात, एक राजा था, वो राजा जहां से भी जाता था सब लोग उसको नमस्ते, राम राम, सलाम सब बोलते रहते हैं। जब राम राम सलाम बोलते हैं तो सामने वाला भी क्या करता है, अगर कोई राम राम बोलता है तो सामने वाला भी क्या बोलता है, राम राम सलाम बोलता है। लेकिन वो राजा, वो जो सेठ जी जो थे, तो सेठ जी क्या करते हैं, कभी भी सलाम या नहीं बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे बोलते जब। लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं थी कि उनको पूछने की, तो जहां भी जाते थे वो लोग उसको देखते, क्योंकि बहुत बड़े सेठ जी थे, तो जहां भी जाते थे उनको सब लोग बोलते रहते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने हिम्मत की और हिम्मत करके उसको पूछा, हम आपको सलाम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं? कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो वो सेठ जी हंसने लगे, कहता हाँ बात तो सही है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कहा कि उस सेठ जी ने बताया, एक समय था मैं बहुत गरीब था, और जब गरीब था मुझे कोई लोग पूछते नहीं थे, कोई लोग देखते भी नहीं थे, जहां भी से मैं जाता था मेरे से लोग किनारा करके जाते थे। तो उसी समय मुझे एक माता प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी माता। और लक्ष्मी माता प्रसन्न होने के कारण क्या हो गया, मेरे पास धन आ गया, और धन आने के बाद मैं सेठ जी बना, और सेठ जी बनने के बाद फिर हम सलाम करते हैं, तो मुझे सलाम नहीं करते, मेरे पास आई भी लक्ष्मी को सलाम करते, मैं तो वही हूं गरीब, हाँ, जो कोई देखते नहीं थे, पूछते नहीं थे, साधारण वही व्यक्ति हूं। तो जब भी कोई नमस्ते, राम राम, सलाम बोलता है तो मैं सभी को गिनता रहता हूं, कौन राम राम बोल रहे हैं, कौन सलाम बोल रहे हैं, कौन नमस्ते बोल रहे हैं, और गिन करके क्या करता हूं, रात को जब भी मैं वापिस अपने रूम में जाता हूं, घर में जाता हूं, तो मेरे कमरे में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, और मैं उस लक्ष्मी माता को कहता हूं, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको राम राम बोला, इन्होंने सलाम बोला, इन्होंने नमस्कार बोला है, इसीलिए मैं बोलता हूं, कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे। यह है नम्रता, यह है निरंकारिता। इसी तरह आज हम भी क्या थे, हा? क्या थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मुझे अभी मेरे को खुद के, मेरे खुद जब मैं यहां मधुबन में आया था, मेरे को वो दिन याद आए, आज से करीबन 28 साल पहले जब मैं आया था, एक छोटा सा कार्टून में, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक कार्टून में एक ड्रेस भी नहीं था, वही एक ही ड्रेस पहन करके आया था, और आकर के बस मेरे को सेवा मुश्किल से विज्ञान भवन में मिली थी। अब मैं ना हिंदी भाषा जानता था, ना कोई भाषा भी जानता था, बस जो भी सेवा मिली थी हाजी करके करता रहता था। तो सेवा करते करते फिर यहां से मुझे दिल्ली में जाने का मौका मिला, दिल्ली में पांडव भवन में। अब वहां मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, तो एक बार एक भाई ने मुझे बगीचे में छोड़ दिया हिंदी नहीं आती करके, तो मैं बाबा को कहा, बाबा मुझे हिंदी नहीं आती, तो धीरे धीरे हिंदी सीखे, और उसके बाद फिर वापिस वहां किचन की सेवा, उसने मेरे पास कहा कि तुम मेरे पास नहीं रहना, तुम किचन में सेवा कर लेना। तो धीरे धीरे किचन में सेवा, किचन में पोछा लगाते थे, पोछा लगाते लगाते धीरे धीरे खाना बनाना सीखे, फिर वहां से भी धीरे धीरे ये मधुबन में आए, शांतिवन में, शांतिवन में किचन की सेवा मिली, वो सेवा करते करते धीरे धीरे स्कूलों में उगर करते करते आज कहां पा, कितना 6000 जितना स्कूलों में सेवा किया होगा, 800 जितना जी, अभी कितनी सारी जब कहीं जाते तो महिमा कई लोग करते रहते। मैं कभी सोचता बाबा हम तो कुछ ही नहीं देते, ना मैं हिंदी जानता था ना कुछ, तो वास्तव में देखा जाए तो हम तो वही है, हम तो बदले थोड़ी है, लेकिन वास्तव में किसी का भाग्य बनाने के लिए बाबा क्या करता है, उसके अंदर विशेषता भरता है, कोई कला भरता है। अगर उसको हम अपना समझ करके हम उसी रुबाब में रहेंगे, उसी नशे में रहेंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा, कोई मेरे को सम्मान नहीं देगा, तो तुरंत संकल्प चलना शुरू हो जाए, और जिसके संकल्प चलते हैं वो कभी भी सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नम्रता बहुत जरूरी है, जो जिसके संकल्प कम से कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, मान अपमान निंदा स्तुति में भी जिसके संकल्प चुप है, वो मन कुछ नहीं सोचता, मान मिले तो भी मन चुप रहे, कोई मेरी निंदा करे तो भी मेरा चुप रहे, तब हमारा जाकर के सोल कॉन्शियस स्थिति, और जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति है वो अपने इंद्रियों पर शासन कर सकता है, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्थिति बनने से अति इंद्रिय सुख मिल जाता है। जब ये सुख मिल जाता है, जो इंद्रियों का, जैसे कोई जिलेबी खाता है उसके सामने मुरमुरा फीका लगता है, इसीलिए बाबा कहते हैं अगर इंद्रियों का राजा बनना है तो क्या बनो, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, अशरीरी बनने की मेहनत करो, और जो ये मेहनत करता है उसकी इंद्रिया उसके वश में रहेगी, और जिन्होंने संगम युग में आप इंद्रिया वश में किए वो भविष्य का क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो राजा बनने का हमारा लक्ष्य है, नहीं तो ऐसे नहीं कि आए थे तो राजा बनने के लिए और बन गए दास दासी, क्योंकि न जाने अब और कितने दिन हमको मिलने वाले हैं, तो अब तक के पुरुषार्थ अनुसार हम चेक करना है हम कितने राजा बनेंगे। इसीलिए राजा बनने के लिए अपने ऊपर ध्यान देने की, हमें और किसी को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, वो क्या करता है, ये इतना साल में ज्ञान में चलता है। अगर दूसरों को देखेंगे भावना ही खराब हो जाएगी, क्योंकि भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर मधुवन में आकर के हमारी भावना ही खराब हो गई, नहीं तो कई हम देखते हैं कि कई सेवादार आते हैं यहाँ की, कुछ न कुछ निगेटिव बातें लेकर के जाएंगे, फिर वो सेंटर पर जाकर के वहां पहले तो पुरुषार्थ अच्छा, इसलिए आज तक कई भाई बहने क्या करते हैं मधुबन में भेजते भी नहीं, कहते हैं नहीं नहीं हमारे भाई क्यों, यहाँ आकर के क्या करते, कोई निगेटिव नहीं देखना, अपने आप खुद अंदर अपने आप को देखना है, औरों को किसी को भी नहीं देखना है। अगर थोड़ी भी निगेटिव बातें देखी, भावनाएं खराब हो जाएगी, योग लगना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें व्यर्थ, अगर कोई सुनाता भी तो उसको हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे ऐसी बातें मत सुनाई करो। अगर एक बार अंदर कालिका से माया घुस गई, फिर धीरे धीरे मुख से भी चालू हो जाएगी, धीरे धीरे मन में भी घुसेगी, आंखों में भी, सब पूरे प्रॉब्लम्स निर्माण करेगी। इसीलिए हमें इसको हर कर्मेंद्र को क्या करना है, सवेरे सावधान करो, आज किसी की भी हमें व्यर्थ बातें ना सुननी है। अब समझो कोई घर में आकर के कचरा लाकर डालेगा, कहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जहां पूजा होती है वहां डाला करो, कहेंगे। इसी तरह कोई व्यर्थ बातें सुना था, हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी, बताओ ना क्या हुआ। अब एक बार अगर आदत लगी तो ऐसे के साथ घूमेंगे, ऐसे के साथ चलेंगे, और इसे फिर वायुमंडल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और जो परचिंतन करता है, मुख भी वश में नहीं है, मन भी वही चिंतन चलता है, फिर वो व्यक्ति कभी राजा कैसे बनेगा। इसलिए राजा बनने के लिए बाबा कहते बच्चे इंद्रियों पर शासन करना जरूरी है। ठीक है, ओम शांति।